ओम शांति।
यह है अगस्त बाप दादा का 8-4 वाणी का क्लास 8 अप्रैल 92। आज बेहद का बाप अपने आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। आदि रचना, आदि तो जरूर श्रेष्ठ ही होगी और डायरेक्ट रचना कोई के थ्रू नहीं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो इनको देख रहे हैं मन बुद्धि की आंखों से। वो कोई जरूरी नहीं है कि सामने मौजूद हो, दूर बैठे भी सामने हो सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, शिववंशी ब्रह्मावंशी नहीं कहा, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां मतलब ऐड हो गया। ब्रह्मावंशी के साथ कौन सा टाइटल, शिववंशी। तो शिववंशी कौन से कुमार होते हैं, शिव के वंश। शिववंश और ब्रह्मावंश में क्या अंतर है, शिववंशी हैं निराकारी स्टेज वाले और ब्रह्मावंशी में कोई जरूरी नहीं है कि सब निराकारी स्टेज वाले ही हो, क्योंकि ब्राह्मण कोई निराकारी स्टेज को धारण कर पाते हैं, कोई नहीं भी कर पाते। लेकिन ब्राह्मण की तो धारण किया, पवित्र तो बने, तो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां डायरेक्ट ब्राह्मण आत्माएं हो, जो डायरेक्ट बाप के बच्चे, जो बाप के बच्चे हैं वो रुद्रमाला के बच्चे, रुद्रमाला के मण के हैं जो डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हैं। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, आदि देव आदि देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता, ऐसे तो 33 करोड़ देवता, उनमें भी आदि त्रिदेव तीन देवता, लेकिन उन तीनों में भी आदि देव, देवदेव महादेव आदि देव, जिनके लिए शास्त्रों में बयान है तुम आदि देव पुरुष है पुराण तुमस्य विश्वस्य जगतः निधानम्, सारे जगत के तुम निधान हो आदि देव। तो आदि देव की आदि रचना हो, मध्य की रचना नहीं, अंत की रचना नहीं, आदि रचना। इसलिए कल्पवृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ों में दिखाए गए, मूल भाग में देखा है ना अपना स्थान। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। जिन बच्चों को आज देख रहे हैं वो बच्चे डायरेक्ट रचना है और अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप ब्रह्मा माता डायरेक्ट परमात्मा की रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, कोई बीच में और ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं आता जो मीडिया बने, तो फर्क हुआ ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म की आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आदि रचना माना पहले ही जन्म से जो आते हैं और सत्युग के दूसरे तीसरे बाद वाले जन्मों से जो आवेंगे उनको आदि रचना नहीं कहा जाएगा, वो तो दूसरे धर्म की आत्मा हो गई क्योंकि अन्य धर्मों से प्रभावित हो जाती है। प्रभावित माना प्रजा, जो डायरेक्ट बाप की रचना है वो बाप के सिवाय और किसी से प्रभावित हो नहीं सकती। तो डायरेक्ट रचना और इनडायरेक्ट रचना में अंतर है। हैं तो सब ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों में भी नौ कुड़ियां होती है, नौ कुड़ियों में एक दूसरे से श्रेष्ठ माने जाते हैं। कोई ऊंचा ब्राह्मण कोई नीचा। आप परमात्मा रचना अपने रचयिता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रचना हो डायरेक्ट कनेक्शन है इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली, बीच में आप बन गए मीडिया, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं हुआ इससे परमात्मा बाप से। तो आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष की तना हो। और सभी धर्म आप तना से निकले हैं, डायरेक्ट बाप से नहीं निकले। जो आदमी तो अंत, यज्ञ के भी आदमी जो डायरेक्ट रचना थे वो अब लास्ट में फिर डायरेक्ट बाप के डायरेक्ट बच्चे बने। और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। वृक्ष का चित्र याद है ना, तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। बीज माने बाप, कौन सा बाप, संबंध कौन से बाप के साथ। संबंध तो साकार में ही होते हैं, सम माने समान, सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन। समान या संपूर्ण सब प्रकार का बंध, सर्व संबंध है इसके साथ, डायरेक्ट बीज बाप के साथ। ज्योतिबिंदु सिर्फ ज्योतिबिंदु के साथ संबंध की बात नहीं होती, वो तो सिर्फ एक ही संबंध है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है सिर्फ, दूसरे कोई संबंध नहीं बनते। जब वो ज्योति बिंदु बाप साकार मनुष्य सृष्टि के बीज प्रजापिता में प्रवेश करता है तो और अन्य प्रकार के सर्व संबंध बनते हैं। तो आपका डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है और उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, अर्थात वो डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ने की हिम्मत नहीं रह सकते। वो तथाकथित ब्राह्मण जो आदि रचना नहीं है और आप डायरेक्ट संबंध में हैं, इनडायरेक्ट में बिचौलिया बीच में कौन हुआ? उन तथाकथित ब्राह्मणों का संबंध है बाप से जुड़वाने के लिए, बीच में मीडिया कौन हुआ जो वो इनडायरेक्ट हुए? जो डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हैं कोई भी चौधरी बनते, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं है जो डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जोड़ सके। ये आपको मीडिया बनना पड़ेगा। तो कितना महत्व है आपका, आपका डायरेक्ट, आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे हम परमात्मा की संतान, जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वो सभी अपने को क्रिश्चियन है, बौद्ध है, इस्लामी है, यह कहलाए। किंतु उनको वो भान रहता है डायरेक्ट शिववंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे, क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन है यही जानते हैं, वो सभी धर्म पिता के वंश हैं, अपने अपने धर्म पिता के वंश हैं। और आप क्या कहेंगे, किसके वंश हैं? परम पिता के वंश हैं, जिसके ऊपर कोई पिता होता ही नहीं, हम बापों के बाप की संतान। वो तो अनेक बाप है, अनेक धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिता, उन्हीं की संतान। और उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, हम उसकी संतान। तो धर्म पिता और परम पिता इतना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं अभी, कौन हो? परम पिता के हो या धर्म पिता के हो? डबल विदेशी किसके हैं? परम पिता के। पूछा किससे, डबल विदेशी कौन? लौकिक से भी दूर गए और अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी दूर गए, दोनों से देश निकाला मिला, तो वो हो गए डबल विदेशी। तो परम पिता के होना अर्थात डायरेक्ट रचना होना, और धर्म पिताओं के होना मन इनडायरेक्ट रचना। तो किसके हो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर हो जाता है, नशे में भी अंतर होता है, डायरेक्ट के नशे में और इनडायरेक्ट के नशे में भी अंतर होता है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई का डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कनेक्शन हो और कोई का कनेक्शन किसी के थ्रू हो तो नशे में भी अंतर जरूर होगा। नशे में अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वह भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, ये अलग अलग मान के याद करते हैं। ऐसे तो नहीं याद करते कि शंकर के थ्रू हमको शिव मिला है, ऐसे करते हैं कोई भक्ति मार्ग में कि बीच में शंकर मीडिया है उसके बाद हमको शंकर के थ्रू शिव मिलता है, शिव हमको डायरेक्ट नहीं मिलता, ऐसा तो भक्त नहीं कहते। शिव शंकर के भक्त जो शिव के भक्त हैं वो बीच में मीडिया शंकर को अलग से मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो क्या समझते हैं कि शंकर ही शिव, अलग नहीं मानते हैं? बोला भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। कोई हनुमान के थ्रू भगवान बाप को याद करेंगे, कोई गणेश के थ्रू याद करेंगे, कोई राम के थ्रू, कोई भगवती के थ्रू, तो ये तो थ्रू हुआ। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वह भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, यानी शंकर अलग है और शिव उससे ऊंची अलग और सत्ता है, ऐसा मान करके याद नहीं करते। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि वो निराकार शिव ज्योति बिंदु संसार में जब आता है तो परमपिता परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो डायरेक्ट शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है, बाकी उसका कोई दूसरा रूप नहीं होता। इसलिए दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं देशों और विदेश में भी, उनमें शिवलिंग के बाद सबसे जास्ती जो मूर्ति मिली है वो कौन सी मूर्ति मिली है? कौन से देवता की? नग्न देवता की मूर्ति, उसको जैनियों में तीर्थंकर कहते थे, जो तिलवाड़ा मंदिर और जैन मंदिर में रखी हुई है। तो भक्ति में भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गए ना। कौन? देवताओं के थ्रू याद करने वाले। जो अन्य देवताओं के थ्रू याद करते हैं वो तो हो गए इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट याद करते हैं वो रूप कौन सा है? शिव शंकर एक हुआ ना, शिव शंकर एक हुआ, ये क्या बात हुई? अभी तक तो ज्ञान यही सुनते चले आए कि शिव अलग है और शंकर अलग है, ब्राह्मणों की दुनिया में तो ऐसा ही ज्ञान सुना था। अब ये कहां से नया ज्ञान निकल पड़ा? ये कौन सा सुदर्शन चक्कर घूम गया है? जैसे सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, पहिए रथ का पहिया, उसको बना दिया सुदर्शन चक्र, जो और नीचे है वो ऊपर चली गई, और ऊपर वाली अर्थ नीचे आ गई। तो ये कैसा सुबह संकट संयोग किया, कि पहले तो कहते थे शिव शंकर अलग अलग है और अब कह दिया शिव शंकर एक है। तो बात नहीं समझ में आई, तो समझ में ना आने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय बताया जो टाइम था बताने का, जिस समय बच्चों की बुद्धि जैसी थी थी, तो उस समय बताया कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है। तो शिव ज्योति बिंदु है तो बिंदु बाप की सामान्य पहचान मिली, लेकिन विशेष पहचान नहीं थी। अब हमको शिव बाप की विशेष पहचान भी मिल रही है, क्योंकि बिंदु बिंदु तो सब आत्माएं, फिर कैसे पहचाना जाएगा कौन सा ज्योति बिंदु परमात्मा है शिव और कौन सा ज्योति बिंदु आत्मा है, ये अलग अलग करके कैसे पता चलेगा, ये विशेष ज्ञान कैसे होगा, आत्मा और परमात्मा का अंतर कैसे पता चलेगा। तो बिंदु बिंदु तो सदैव जैसे दिखे, कोई कहे उसमें बहुत लाइट होती है, इसमें बहुत लाइट हो वो शिव, अरे तो लाइट कोई स्थूल है क्या, वो ज्योति बिंदु कोई स्थूल है क्या, तो ज्ञान की लाइट है ना, और ज्ञान की लाइट बिना साकार रूप के दिखाई नहीं पड़ सकती, ज्ञान को मुक्ति सुनाया जाएगा, बिना शरीर के ज्ञान कैसे सुनाया जाएगा, ज्ञान की लाइट का पता कैसे पड़ेगा, क्या प्रेरणा से बैठ पढ़ाई पढ़ाई जाती है ज्ञान की, नहीं। तो शिव ज्योति बिंदु और शंकर की बिंदु, बिंदु जो आत्माएं हैं पार्टधारी वो तो अलग अलग है, इसलिए बताया क्योंकि बिंदु बिंदु का ज्ञान था, तो सिर्फ इतना बताया कि वो बिंदु आत्मा जो सुप्रीम है वो अलग पार्ट बजा, और जो शंकर की आत्मा है वो अलग पार्ट बजा, दोनों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन जब विशेष ज्ञान मिला तो पता चला कि शंकर का जो स्वरूप है, जो मंदिरों में और मूर्तियों में पूजा जाता है, वही स्वरूप देवताओं का आदि रूप है। सब देवताओं में आदि रूप किसका है, शंकर का, जिससे दूसरे धर्म वाले आदिदेव या आदम या एडम के नाम से पुकारते चले आ रहे। नाम एक ही है, सिर्फ उच्चारण में थोड़ा अंतर हो गया, वो आदिदेव एडम आदम, वो व्यक्तित्व जिसका अपना शरीर होता है, लेकिन सूक्ष्म स्टेज में होने के कारण सूक्ष्म शरीरधारी कहा गया है, उसी में परमात्मा बाप प्रवेश होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, और संगम युग में वो स्वरूप इतनी गहरी छाप छोड़ जाता है देश और विदेश में, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के सामने द्वापर युग से उसी की मूर्तियां सबसे जास्ती बनती है, जैसे सोमनाथ मंदिर बना, तो सोमनाथ मंदिर में सिर्फ लिंग ही नहीं था, लेकिन मोहम्मद गजनी ने आकर के शिवलिंग को तोड़ा हीरा निकाला और साथ साथ जो शंकर की मूर्ति रखी हुई थी उसको भी तोड़ दिया। तो इससे साबित क्या हुआ कि आदि से ही शिव और शंकर साकार और निराकार के प्रतीक माने गए। शिव है निराकारी शरीर में रहने वाला और शंकर है शरीरधारी। सूक्ष्म शरीर भी तब होता है जब स्थूल शरीर होता है। भूत प्रेत जो दिखाई पड़ते हैं किसी किसी को, तो जो उनका रूप होता है वो जरूर पहले कोई स्थूल शरीर रहा है, तब सूक्ष्म शरीर बना। जैसे ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है लाइट का, तो वो साकार रूप में पहले कभी रहा है। तो शिव और शंकर जब साकार रूप से सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, परम पिता परमात्मा गॉड फादर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन दोनों के दो रूप अलग अलग नहीं होते, दोनों का एक रूप होता है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। बताइए अगर शिव बाबा ज्योति बिंदु को कहें तो वो ज्योति बिंदु तो ब्रह्मदेव में ही सृष्टि पर आता है, सदा कायम कहाँ रहता है? सदा कायम कहाँ हुआ? सदा कायम मैंने 5000 वर्ष के ऑलराउंड पीरियड में जो कायम रहता हूं वो सदा कायम हूं। तो ऑलराउंड जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एक दिन भी ऐसा नहीं 5000 वर्ष में हो सकता उसका जो शक्ति रूपी रघुवंश पर वो आत्मा पार्ट शरीर से न बजा। तो ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा वो सुप्रीम सोल गॉड फादर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला करके एक कर दिया। यादगार कहां किए? तो दूसरे धर्म के जो हैं वो तो इनडायरेक्ट हो गए और आप हैं डायरेक्ट बाप के बच्चे। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। कौन? भक्त लोग राम के रूप को याद करते हैं, लेकिन राम को दे लिया, धनुष बाण हाथ में उठाया हुआ है, चैन की बंसी बजाते हुए तो बैठा नहीं, कोई काम संपन्न कर लिया हो। धनुष बाण हाथ में है माना युद्ध की स्टेज में है, कभी भी युद्ध का मौका आ सकता है। तो युद्ध ही पूरा नहीं हुआ और जब माया से युद्ध पूरा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे कि गद्दी के ऊपर आसीन हो गया? नहीं। तो राम का रूप जो धनुष बाणधारी दिखाया वो तो अधूरा रूप हुआ, वो तो हुआ पूर्व जन्म की बात, क्योंकि राम का फेल हुआ पूर्व जन्म में। फेल हुआ? किसी मुरली में ऐसा तो नहीं कहा कि राम फेल हो जाएगा यानी फ्यूचर में फेल हो जाएगा, ऐसा कहा? नहीं कहा। उससे क्या साबित हुआ कि राम वाली कोई आत्मा थी जैसी कि आदि में जो पढ़ते पढ़ते फेल हो गई, और फेल तो सभी को होना पड़ता है। कोई पहले फेल होते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं, माया पछाड़ती सबको है। ये कोई अहंकार न करे मुझे हमको माया नहीं पछाड़ सकती। कोई शक्ति की ऐसी आत्मा है 8 जन्मों में जो त्रेता में आकर इस चंद्रवंशी में बसती हो? शक्ति की कोई ऐसी आत्मा है? जो त्रेता में आकर चंद्रवंशी में बनती हो? सतयुग की कोई ऐसी आत्मा है? ऐसी कोई आत्मा नहीं जो त्रेता में आकर के चंद्रवंशी में बन। तो कोई ऐसी आत्मा सतयुग की है? यानी हर आत्मा माया से पछाड़ के आदि में कोई फाइनल एग्जाम नहीं होता। जो फेल हो गया तो फाइनल हो गया। फाइनल कब होना है? अंत में। तो जब फाइनल में कोई फेल हो जाए तो कहेंगे फेल हो गया। तो जो राम सीता को मानते हैं अपना इष्ट, वो तो अधूरे रूप को, 14 कला संपूर्ण देवता को अपना इष्ट मानते। जो युद्ध भूमि की स्टेज में खड़ा हुआ है, विजय की स्टेज में नहीं है, तो वो भी इनडायरेक्ट हो। राम के थ्रू परमात्मा बाप को याद, तो इनडायरेक्ट हो गई भक्ति। क्यों? क्योंकि अधूरे रूप के थ्रू याद किया। क्योंकि रचना भक्त आत्माओं की भी पीछे की आत्माएं हैं। जो भक्त आत्माएं हैं वो भी पीछे वाली हैं, क्योंकि द्वापर से भक्त शुरू होते हैं। आप डायरेक्ट परमात्मवंशी आत्माएं हो, डायरेक्ट परमात्मवंशी आत्माएं हो। किस आधार पर बताया है? डायरेक्ट परमात्मवंशी कैसे हो सकते है? हाँ, वो ही डायरेक्ट परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि ज्योति बिंदु उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते। ज्योति बिंदु शिव, उनके नेक्स्ट और सिर्फ एक ही आत्मा हो सकती है जिसके लिए ज्योति बिंदु डायरेक्ट है। वो कौन सी आत्मा जिसको मुरलियों में बोला नेक्स्ट टू शिव शंकर, या नेक्स्ट टू शिव कृष्ण? वो समझते होंगे सतयुगी कृष्ण। सतयुगी कृष्ण नेक्स्ट टू शिव नहीं है। संगम युग में जो कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है, जिसका शास्त्रों में गायन है, सतयुग के रामकृष्ण का शास्त्रों में कोई गायन नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। संगम युगी कृष्ण के सारे गायन है। तो जो संगम युगी कृष्ण है वही शंकर है, क्योंकि उसमें कृष्ण की भी सोलकारी करती है तो राम की भी सोलकारी करती है। आप डायरेक्ट परमात्मवंशी आत्माएं गिनी जाती हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। पहचान नहीं होती, ऐसे ही भक्ति करते रहते हैं कि वहां पहचान होती है नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदमी ने। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माएं द्वारा है। बात वाली
और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। भक्त भी आप डायरेक्ट भक्त हो। जब डायरेक्ट बच्चे हैं तो भक्त भी कैसे होंगे, डायरेक्ट भक्त होंगे। मान लो द्वापर के आप सिर्फ शिवलिंग की भी भक्ति करते हैं, जानते नहीं है कि लिंग क्या है और उसमें बैठा बीच में हीरा क्या है, न जानते हुए भी वहां डायरेक्ट भक्त है, बीच में और कोई मीडिया नहीं। डायरेक्ट कैसे, लिंग बीच में मीडिया नहीं हो गया है, लिंग मीडिया हुआ कि नहीं। हाँ, मीडिया तो जरूर साकारी होगा, ज्योतिबिंदु से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं में बड़ा शंकर, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ, शंकर। ये मुरली का मावा की ही साबित कर रहा है कि गॉड फादर सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का बड़ा बच्चा शंकर हुआ। बाप एक है तो उसका बच्चा भी एक ही होगा, जो वर्षे की प्राप्ति करने वाला होगा। बड़े बच्चे को ही बादशाही मिलती है। तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु से डायरेक्ट कनेक्शन तो सिर्फ एक का ही है, जो नेक्स्ट टू शिव कहा जाता है। बाकी डायरेक्ट शिव ज्योति बिंदु से कनेक्शन किसी का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि शिव है आत्मा और शंकर है शरीर। ये आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति हो गई। जब तक ये प्रवृत्ति न बने तब तक प्रवृत्ति मार्ग का धर्म भी स्थापन नहीं हो सकता। तो निराकार ज्योति बिंदु शिव शंकर में प्रवेश होकर के सारे संसार में परमात्मा गॉड फादर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदमी नहीं। आदमी किसकी पूजा होती है, शिवलिंग। तो उस शिवलिंग में भी शिव ज्योति बिंदु है और लिंग कौन है, साकार। आत्मा भी रचना इनडायरेक्ट आत्मा, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। भक्त भी आप डायरेक्ट भक्त, इनडायरेक्ट नहीं हो। अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो तो प्राप्ति में भी देखो आप डायरेक्ट आत्माओं की, डायरेक्ट आत्माओं को अर्थात डायरेक्ट रचना को वर्षा अनेक जन्मों के लिए जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो डायरेक्ट होते हैं उनको, और जो जितने इनडायरेक्ट होते हैं उतनी प्राप्ति भी कम जन्मों की करते हैं। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। कितने समय का, 84 जन्मों का। उनको किसी को मिलेगा 83 जन्म का, यानी 19 जन्म का, 20 जन्म का, 18 जन्म का या और कम। लेकिन तुमको मिलता है पूरा 21 जन्म का जीवन मुक्ति का वर्षा। 84 जन्म तो जीवन मुक्ति होती नहीं, 21 जन्म जीवन मुक्ति होती है। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाले डायरेक्ट बाप की रचना है, उनको जीवन मुक्ति भी सबसे जास्ती मिलती, दूसरे धर्म वालों को जीवन मुक्ति कम मिलती। यानी दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, उनको कम मिलेगी और डायरेक्ट बच्चों को पूरी मिलती है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता, आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, पूरा आधा कल्प। उनकी जीवन मुक्ति आधा कल्प नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ कम हो गई। और अन्य आत्माओं को आधा कल्प में जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। हाँ, अन्य आत्माओं को आधा कल्प में जीवन मुक्ति और जीवन बंध है दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। तो वो भी द्वापर के आदि की आत्माओं को मिलता है, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्ति होती है। द्वापर के जो आदमी आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, बाद वालों को नहीं, चाहे वो आधार मूर्त जड़ों के ब्राह्मण हो तो उनको भी ऐसा ही हिसाब है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्ति होती है। आपको गोल्डन और उनको सिल्वर एज, क्यों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क हो गया। डायरेक्ट वाले पहले प्राप्त करते हैं, इसलिए गोल्डन एज में प्राप्त करते हैं, और वो सिल्वर एज, वो ब्राह्मण जब सिल्वर एज की शूटिंग होती है तब बाप को पहचानते हैं। तो जब पहचानेंगे तभी तो प्राप्ति करेंगे कि पहले कर लेंगे। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है और प्रकृति भी गोल्डन एज है। जो प्रकृति के सुख भोगते हो वो भी गोल्डन एज के भोगते हो, चक्र को जानते हो ना, अच्छी तरह से जानते हो कि इस चक्र में आप गोल्डन एज के सुख भोगने वाले हो। हाँ, और वो सिल्वर एज में जाकर के सुख भोगते हैं। ऐसा नहीं वो ही भोगते हैं, हम नहीं भोगते। सिल्वर एज में हम भी भोगते हैं, लेकिन हमको विशेष प्राप्ति होती है गोल्डन एज की। हाँ, और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग का पर एज है। एज तो गोल्डन है लेकिन युग पापर एज है, तो कितना अंतर हो गया। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान, वो रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते, तो कितना अंतर हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का। इस बात की गहराई को समझते हो ना, नशा चढ़ता है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है और वो डायरेक्ट परमात्मा की रचना नहीं है। या कभी कभी नशा चढ़ता है और कभी कभी गुम हो जाता है। ये नशा कि हम डायरेक्ट परमात्मा बाप की रचना है, ये सदा रहता है या कभी कभी संशय बुद्धि हो जाते हो? तो 84 जन्मों की प्राप्ति में भी अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि शूटिंग का असर वास्ट ड्रामा में जरूर पड़ेगा। सबको एक जैसा नहीं है।
आदि में शिव शंकर अलग अलग है बोलते आप, मुझे समझाता हूँ। अंत में शंकर के,
जब शिव शंकर आदि में अलग अलग बोला तो आत्मिक रूप बताया, बिंदु बिंदु, शरीर की पहचान नहीं दी थी। और अब शरीर सहित पहचान दी, क्योंकि अब प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई है। पहले प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई नहीं थी। ब्रह्मा सरस्वती को प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। कहां 7 साल का बुड्ढा और कहां 14 साल की कन्या? क्या प्रवृत्ति हो सकती है? शोभती नहीं। हिंदी हिंदी
ज्ञान पर ही वो चली है ना?
कौन चली? वो जो कुछ भी चले, ब्रह्मा के थ्रू जो कुछ भी चला, तो ब्रह्मा माँ है। बेसिक नॉलेज देने वाली, ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाली माँ नहीं होती, क्योंकि दरबार संभालना पड़ता है माताओं को। ऊंची पढ़ाई कैसे पढ़ाएगी?
वो भी नेचुरल है ना, बाप छोड़ते समय मेंटेनेंस करने वाला, वो भी नेचुरल है ना।
नेचुरल तो है, लेकिन अंतर हो गया माँ के थ्रू प्राप्ति में और डायरेक्ट बाप से प्राप्ति में अंतर है। ब्राह्मण धर्म में और देवता धर्म में अंतर है। ब्राह्मणों की अवस्था नीचे ऊपर होती है और ब्राह्मण संपूर्ण बन गए तो संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता, उनकी अवस्था ऊंचे नीचे ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि अपने स्वरूप का जब पक्का निश्चय हो गया, साक्षात्कार हो गया कि मैं ये बनने वाला हूँ, हु एम आई, ये पहली हल हो गई, तो संशय और निश्चय की परिधि से बाहर हो जाती। तो देवता के बच्चे देवता होने चाहिए, अमरनाथ के बच्चे अमर होने चाहिए, बार बार मरने वाले नहीं होने चाहिए। अब समय नहीं रह गया,
होने चाहिए। नहीं, अमर होता है क्योंकि अमरनाथ के बच्चे हैं।
जब हैं तो संशय आता है, ये नहीं होना चाहिए।
फिर भी अमर है, फिर भी अमर है, वो अमरनाथ के बच्चे हैं। अमर है, अमर चाहिए ना क्या?
अमर तो है, अमर तो है, लेकिन जो अमर होते हैं, अमर माने देवता, और जो देवता होते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते।
देवता के बच्चे देवता है ना, देवता चाहिए क्या?
देवताएं बुद्धि से बीमार नहीं पड़ते। बुद्धि के अनिश्चय की स्टेज जब होती है तो बुद्धि से बीमार हो जाते, तो बीमारी भी ना आए। ये तो ठीक है, अमरनाथ के बच्चे अमरनाथ ही होंगे। कहीं किसी प्रभाव में आ गए और अनिश्चय पैदा हो गया।
आप बताए कि
तो चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्ति अलग अलग हो जाती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। इस चक्र को जानते हो ना अच्छी तरह से। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग का पर है, यह आयरन एज है। कापर भी होता है तो उनकी आयरन एज भी होती है, कोई कोई तो आयरन एज में ही आएंगे, कापर एज में भी नहीं आएंगे। कापर एज में उनकी गोल्डन एज है और आपकी एज गोल्डन एज में गोल्डन एज है, तो बहुत अंतर हो गया। आप सर्तो प्रधान है तो प्रकृति सर्तो प्रधान है, वो रजो प्रधान प्रकृति में सर्तो प्रधान स्टेज के अनुभव करते हैं, तो कितना अंतर हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का। इस बात को समझते हो ना कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। कभी कभी नशा चढ़ता है या सदा चढ़ा रहता है, कभी कभी नशा रहता है या सदा रहता, क्या समझते हो? परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, ऐसे तो नहीं, तो परसेंटेज में जरूर फर्क पड़ गया। ऐसे तो नहीं समझते कि निश्चय खत्म नहीं होता है, लेकिन कभी 80% तो कभी 50% हो जाता है। लेकिन रहना क्या चाहिए? बाप के प्रति ऐसे नहीं कहेंगे कि 100% निश्चय नहीं है, 99% निश्चय है कि ये हमारा बाप है, 1% हमारा बाप नहीं है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। अगर 1% भी निश्चय नहीं है तो अनिश्चय बुद्धि की लिस्ट में हो गए, बाप के बच्चे नहीं हुए। डायरेक्ट बाप के उस समय बच्चे नहीं हुए, कवर प्रभाव चढ़ा हुआ है, तो वो उतरने में टाइम लग जाता है, तो प्रभावित हो जाते हैं दूसरों से। नहीं तो बाप है तो 100% ही बाप होता है। निश्चय बुद्धि माना निश्चय बुद्धि, कोई हमसे ये कहे कि तुम्हारा ये बाप नहीं है तो हम मान लेंगे क्या? कभी नहीं मानेंगे। कोई हमको कितना भी बरगलाने की कोशिश करे कि तुम्हारा तो बाप वो चमार है, तुम ब्राह्मण से पैदा नहीं हो, ये ब्राह्मण बाप तुम्हारा नहीं है, तो हम मान लेंगे नहीं? हाँ, तो यहां भी ऐसे होना चाहिए। जब एक बार अंजाम कर लिया कि ये मेरा बाप है, बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, परमात्मा के महावाक्यों के आधार पर, तो फिर हीला हवाला क्यों पैदा होता? फिर अनिश्चय कहां से आ जाता? इसका मतलब मायावी धर्मों की परत अभी भी चढ़ी हुई है, उतरती नहीं है। तो नशा हमेशा रहना चाहिए। अभी फलक से सदा नशा रहता है ये नहीं कहते हो, रहना चाहिए ऐसा कहते हो। संपूर्ण बनने में जिसमें चाहिए शब्द समास समाप्त हो जाए, सभी के मुख से निकले, उसके लिए अभी कितने वर्ष चाहिए है? सभी के मुख से ये निकले कि अब हाँ कि हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, नशा 100% रहेगा, तो उसके लिए 100% नशे के लिए कि हम बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि सदा बने रहे, उसके लिए अभी कितने वर्ष और चाहिए? तो इस एक सेकंड को कायम रखना, इस एक सेकंड को फिर कायम रखना, ऐसा ना हो कि यहाँ तो एक सेकंड में निश्चय बुद्धि हो गए। और माउंट आबू से नीचे उतरे, यानी जो संगठन की ऊंची स्टेज है उससे जब नीचे उतरे और किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया और संघ के रंग में आए तो टोटा वाटा। एट अप्रैल 92 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। बाप भी चाहिए पूछता है कि 2 वर्ष अभी और चाहिए, 4 वर्ष और चाहिए। बाप भी ये पूछता है कि आप हमारे बच्चे नहीं, बच्चे हो, बच्चे बनाने में अभी अभी और वर्ष चाहिए। बाप तो नहीं पूछता कि अभी और वर्ष चाहिए, तो जब बाप नहीं पूछता कि और वर्ष चाहिए, तो आपको ये बाप है ये निश्चय करने में अभी और वर्ष चाहिए क्या? अच्छा, अभी कितने वर्ष चाहिए? 10 वर्ष चाहिए या उससे भी जास्ती चाहिए या कम चाहिए? क्योंकि तपस्या वर्ष जब आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया, लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया था? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना कि तपस्या वर्ष में संपन्न बन जाएंगे। तो बन गए, वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए, तपस्या पूरी हुई या होना है संपन्न, और वर्ष चाहिए? देखो, औरों को ज्ञान देते हो, चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। करते हो ना ये चैलेंज कि नहीं करते हो? कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो, ऐसे तो नहीं कहते हैं? किसी से ये कहा कि बाप वर्षा देने आया है स्वर्ग का, अभी 25 वर्ष लगेंगे? नहीं, एक सेकंड में विश्व की बादशाही का वर्षा मिल सकता है, यही कहते हो ना? तो 12 मास में कितने सेकंड हुए? चलो सेकंड छोड़ो, दिन ही गिनती करो तो भी कितने दिन हो गए? पूरा वर्ष बीत गया, तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए बच्चा बनने में? किसका बच्चा? हाँ, बाप का डायरेक्ट बच्चा बनने में भी और समय चाहिए?
नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए।
बच्चों को चाहिए ये औरंगाबाद,
उन बच्चों को चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अभी प्रश्नों की पूछ खलास हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चा बन गया करोड़पति का या अरबपति का, उसको पैसे की क्या परवाह रहेगी, क्योंकि बाप से कनेक्शन है तो परवाह नहीं हो सकती पैसे की। यहाँ कोई स्थूल पैसे की तो बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान धन है। तो ज्ञान सागर के बच्चे बन गए, तो ज्ञान सागर के बच्चे तो ज्ञान में गोता लगाने वाले हो गए या प्रश्नचित्त हो गए? अगर प्रश्नों के ऊपर प्रश्न की लड़ी लगती रहे तो जरूर कुछ न कुछ अभी संशय है। नहीं तो बाप के बच्चे बन गए, बाप जैसे चलाएगा वैसे चलते ही रहेंगे। कोई कहे कि तुम बाप के बच्चे नहीं हो, परमात्मा के बच्चे नहीं हो, तो हम जवाब देंगे ऐसे थोड़े ही बाप से आके कहेंगे ये तो कहता परमात्मा के बच्चे नहीं हो। फिर बाबा ये क्यों कहता है कि हम परमात्मा के बच्चे नहीं है, तो बाप से ये तो कंप्लेंट नहीं करेंगे। बाप का बच्चा तो फलक से कहेगा, जवाब दे देगा, रुकेगा नहीं। तो यहां भी ऐसा नशा चाहिए। तो आपके इस गीत का अभी कितना समय है? नहीं तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या समझते हैं टीचर्स, क्या समझते हैं? चलो स्टूडेंट की बात छोड़ो, टीचर्स यहाँ है ही नहीं। ट्रांसलेट करने वाली टीचर्स तो हैं जो बाप की डायरेक्ट भाषा समझती हैं। आप डायरेक्ट भाषा नहीं समझते हैं। थोड़ा थोड़ा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा पूरा समझते हैं वो पक्के टीचर्स हुए। थोड़ा थोड़ा भी क्यों, बाप के बच्चे तो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा हो जानी चाहिए। बाप का मत तो बच्चों का मत। तो टीचर्स क्या समझती है, अभी और समय चाहिए, अभी और वर्ष चाहिए क्या, या समाप्ति समारोह हो गया? क्या रिजल्ट है, क्या कहेंगे? और वर्ष चाहिए? अच्छा दादियां सुनावे, क्या रिजल्ट है?